आरवी ने चौंकते हुए निगाहें उठाकर देखी तो शान को अपनी तरफ देखता पाया। इन आंखों में आज उसे अपने लिए चाहत नजर आ रही थी। आरवी की धड़कनें थम सी गई, घबराहट के मारे वो हड़बड़ा गई। अपनी एक हथेली शान की सीट पर टिकाए वो उसकी तरफ झुकी हुई थी और हड़बड़ाहट में उसके ऊपर आ गिरी। शान एकदम से चौंकते हुए होश में आया और देखा तो आरवी का सर उसके सीने से लगा हुआ था। दोनों की ही धड़कनें उस सन्नाटे में शोर करने लगी थीं। आरवी ने अपनी आंखों को भींच लिया क्योंकि हड़बड़ी में कांट कर गई थी वो। कुछ सेकंड बाद उसने घबराकर सर उठाकर देखा तो शान अब भी उसे ही देख रहा था, पर अब उसकी आंखें और चेहरा सख्त थे। सारी जिंदगी मेरे ऊपर पड़ी रहोगी या उठने का कष्ट भी करोगी? जैसे ही आरवी के कानों में ये सख्त आवाज़ पड़ी, आरवी तुरंत हड़बड़ाहट में सीधी होकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। शान ने गुस्से के पीछे अपनी भावनाओं को बखूबी छुपा लिया था, पर खुद पर ही खींच गया था कि क्या करने वाला था वो। अब दोनों अपनी अपनी सीट पर खामोश बैठे हुए थे। शान ने गहरी सांस ली और आरवी की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोला, पकड़ो इसे। आरवी ने आवाज़ सुनकर झट से निगाहें घुमाकर देखा तो शान ने आंखों से ही टिफिन की तरफ इशारा कर दिया। आरवी ने झट से टिफिन ले लिया और बंद करके पॉली बैग में डालकर अपने बैग में डाल दिया। कार अपनी रफ्तार में स्टूडियो की वजह बढ़ रही। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आरवी अपने लबों को उंगली से छूते हुए खुद को कोसने में बिजी थी कि अगर तब वो बेवकूफ़ी भरी हरकत ना की होती तो शान लगभग पिघल ही चुका था उसके सामने, पर उसने सब खराब कर दिया। यूं ही वो स्टेडियम पहुंच गए। आरवी बाहर निकली और शान का इंतज़ार करने लगी। शान दूसरी तरफ से घूमकर उसके तरफ आया। इसी बीच आरवी की नज़र उसके सीने पर चली गई। ब्लेज़र के नीचे से दिखती वाइट शर्ट पर उसके लबों के निशान बन चुके थे। शान तो उसको नज़रअंदाज करके आगे जाने लगा, पर आरवी ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाँह को पकड़ते हुए कहा, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। शान ने सर घुमाकर आंखें तरेर कर उसको घूरा और फिर उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ा। इसके साथ ही आरवी की आवाज़ उसके कानों से टकराई, जाइए जाइए, शौक से अंदर जाइए, पर जाने से पहले ज़रा गौर से अपने कपड़ों को देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सबके गॉसिप के आज के टॉपिक बन जाए। शान ने जैसे ही ये बात सुनी उसके आंखों में अजीब से भाव उभर आए। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा, तभी उसकी नज़र अपने सीने पर मौजूद आरवी के लिपस्टिक के निशान पर पड़ी और इसके साथ ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतने में आरवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सीने पर हाथ रखते हुए बोली, वैसे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप शौक से ऐसे अंदर जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लोगा, बस सबको पता चल जाएगा कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। आरवी ने लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाई और सितारों से चमकती आंखों से उसको देखने लगी। शान पहले तो उसके जवाब से हैरान सा रह गया, फिर उसका हाथ छटकते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, वरना हमारे रिश्ते की सच्चाई सबको पता चल जाएगी कि कितनी नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आरवी अब भी नहीं मानी और उसके कॉलर को पकड़कर उसको अपने तरफ खींचते हुए उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोली, अब ये झूठ आपके किसी काम का नहीं, तो सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि प्यार तो आप बहुत करते हैं मुझसे और मैं ये बात बखूबी जानती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो उस रात आप करीब नहीं आते मेरे और ना ही मेरा सामना करने से बचने के लिए छुप कर बैठते। आखिर में आरवी ने उस रात का जिक्र कर ही दिया और ये सब सुनते ही शान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने आरवी की बाँह पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उस रात मैं नहीं, तुम मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाकर करीब आई थी मेरे, और मैं उस मनहूस रात को दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ उतनी ज़्यादा नफ़रत होती है मुझे तुमसे, कि अपने जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए तुमने मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया। और रही भागने की बात, तो गलत तुमने किया था, मैंने नहीं, जो मैं चेहरा छिपाता फिरूं, मैं अपने काम से बाहर गया था। वैसे बहुत बड़ी बेशरम हो तुम, जो इतना सब होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। लगता है मन नहीं भरा तुम्हारा मुझसे, तभी करीब आने की कोशिश कर रही हो कल से, पर मैं अब तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। नफरत करता हूँ मैं तुमसे इतनी जितनी कभी किसी ने नहीं की होती, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, घिन आती है मुझे तुमसे, इसलिए जितना हो सके दूर रहो मुझसे और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। शान की बातें आरवी के मन को छलनी कर गईं। अपनी बात कहकर उसने आरवी को खुद से दूर धक्का दे दिया और ब्लेजर के बटन को लगाते हुए अंदर चला गया। आरवी सुन सी खड़ी उसको देखती रही, आंखें भर आई थी, पर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से ही बोली, बोल लीजिए जितना झूठ बोलना है, जानती हूँ ये सब आप बस मुझ खुद से दूर करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डर है आपको कि मेरे प्यार से आपकी ये झूठी नफरत की दीवार ढह जाएगी। बहुत ज़िद्दी हैं आप, इतना आसान नहीं आपको इस झूठे नफरत के खोल से बाहर निकालना, पर मैं भी पत्नी हूँ आपकी, आपसे अपने दिल की बात ना बुलवाई तो मेरा नाम भी आरवी शांतनु मल्होत्रा नहीं। आरवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली आई, निगाहें हर तरफ घुमाई, पर शान नहीं कहीं नजर आया तो वो रश्मि के पास चली गई। दूसरी तरफ शान अपने कैबिन में गुस्से से यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए खुद में ही बड़बड़ा रहा था, सब उस रात की वजह से हो रहा है, उसको सब पता चल गया और अब वो मुझे झुकाने के लिए ये सब कर रही है, पर मुझे अलर्ट रहना होगा, उसको दिखाना होगा कि वो सब उसका वहम था, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ। दूर करना होगा मुझे उसको खुद से, यही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि मेरे इतने करीब आएगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी उसको आगे चलकर। उसको नफरत करनी होगी मुझसे, क्योंकि उसका प्यार नहीं डिजर्व करता मैं। शान कुछ देर यूं ही खुद से बातें करता रहा, फिर उसने अपनी शर्ट चेंज की और बाहर आ गया। चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसके आते ही बीते एक महीने में जिन जिन सीनों की रिहर्सल हुई सब दोहराकर उसको दिखाई गई और आज का सारा दिन इसी में बीता। शान और आरवी की कोई बात नहीं हुई। घर जाने का वक्त हुआ तो एक नजर आरवी को देखने के बाद बाहर निकल गया। उसका इशारा समझते हुए आरवी भी अपना पर्स लेकर बाहर चली आई। शान कार में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। सर्दियों का मौसम था तो बाहर अंधेरा होने लगा था। आरवी ने अंदर बैठते ही शान ने कार स्टार्ट कर दी। करीब 15 मिनट बाद अचानक ही कार झटके से रुकी। आरवी का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, क्योंकि बीच में ही शान की हथेली आ गई और उसका सर शान की हथेली से जा टकराया। आरवी ने खुद को संभाला और शान की तरफ सर घुमाते हुए हैरानी से बोली, आपने ऐसे अचानक कार क्यों रोकी? शान उसे नहीं देख रहा था, उसकी तीखी गुस्से भरी नजरें सामने घूर रही थी जहां एक काली रंग की बड़ी सी कार खड़ी थी। एक्चुअली वो कार अचानक ही उनके सामने आ खड़ी हुई थी। अगर शान ने वक्त पर ब्रेक ना लगाया होता तो टक्कर होना तय था। आरवी ने शान की निगाहों का पीछा किया और सामने देखने लगी। उस कार से अब 10-12 काले कपड़े पहने गार्ड जैसे आदमी बाहर निकल आए थे और उनकी कार की तरफ बढ़ रहे थे। चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे उनके। इतने सारे हट्टे खट्टे डरावने आदमियों को देखकर आरवी ने घबरा कर शान की बांह पकड़ लिया। ये लोग कौन है और हमारे तरफ क्यों आ रहे हैं? शान, जिसका सारा ध्यान सामने था, उसके कानों में आरवी की आवाज पड़ी। उसने सर घुमाकर लगभग उसको घूरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे बाप के पालतू कुत्ते हैं जिसे उन्होंने अपने दामाद की खातिरदारी के लिए भेजे हैं।
आरवी उसकी बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी और तुरंत ही बोली, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये ठाकुर साहब के आदमी हैं जिन्हें उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है? क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की रग रग से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि उनमें इतनी हिम्मत कभी थी ही नहीं कि सामने से मुकाबला कर सके। इसीलिए वो हमेशा यही रास्ता अपनाते हैं अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने का, और इस वक्त मुझसे बड़ा दुश्मन उनका कोई नहीं। उनके गले में अटकी वो फांस हूँ मैं, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल। इसीलिए अपने इन पालतू कुत्तों को भेजकर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनसे ऐसी ही बुजदिली भरे काम की उम्मीद थी मुझे। आरवी समझ ही नहीं सकी कि अब क्या कहे और परेशान सी शान को देखने लगी। इतने में उन गुंडों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया और हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक को कभी शीशे तो कभी बोनेट पर मारकर कार को तोड़ने लगे। शीशे पर भी वार किया पर बुलेट प्रूफ कार थी तो शीशे नहीं तोड़ सके। वो बाहर से शान को ललकारने लगे। शान की भौहें तन गई ये नज़ारा देखकर। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अंदर ही रहना तुम और मेरे बाहर निकलते ही कार लॉक कर लेना, शान ने कहा, और जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, आरवी ने उसकी बाँह पकड़कर उसको रोक लिया और घबराकर बोली, आप मत जाइए ना, उनके हाथ में हथियार है, आपको नुकसान पहुँचा देंगे। शान ने पलटकर आरवी को देखा तो आंखों में नमी लिए और परेशान और घबराई हुई सी उसको देख रही थी। शान चाहकर भी उस पर इस वक्त गुस्सा नहीं कर सका और उसके हाथ को अपनी बाँह पर से हटाते हुए बोला, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस तुम अंदर रहना और कार्तिक को फ़ोन करके सब बता देना। इतना कहकर शान बिना आरवी की एक सुने कार का गेट झटके से खुलते हुए बाहर निकल गया। गेट के पास खड़ा आदमी ज़मीन पर पड़ा था। शान ने उसके पेट पर लात रखा और उसके हाथ से हॉकी स्टिक छीनकर उसके सर पर ज़ोर से मार दिया। वो इंसान वही बेहोश हो गया और सर से खून की धारा बह चली। शान अपने विकराल रूप में लौट चुका था। वो हॉकी स्टिक लिए आगे बढ़ गया और उन गुंडों पर बरस पड़ा, पर वो गिनती में काफ़ी थे और शान अकेला। फिर भी वो अकेला उनका सामना कर रहा था। एक आदमी ने जब देखा कि शान से जीतना ज़रा मुश्किल है तो उसने छुरा निकाला और उसके तरफ बढ़ गया। आरवी जो सहमी हुई सी सामने का नज़ारा देख रही थी और भय से चीख उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। शांतनु!